तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं उनमें ना तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है ना, और ना उनका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उद्धरण देते रहते हैं किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते, इन्हें श्रद्धा नहीं करते। यहां तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं ना उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशय ग्रस्त रहते हैं वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते उन्हें ना तो इस संसार में और ना ही भावी लोक में कुछ हाथ लगता है, ठीक है ना। तो जो आज का श्लोक है इसी प्रकार से इस श्लोक में भी भगवान कहते हैं, चौथे अध्याय का 40वां श्लोक, नायम लोकोस्ति ना परो न सुखम संदेहात्मना, ना तो इस लोक में ना परलोक में सुख मिलता है जो व्यक्ति संशय वाला होता है। तो फिर आगे प्रभु लिखते हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है, अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान में मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता, अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। अब अगला पेज है पेज नंबर 180 में, तात्पर्य में 20 से मैं पढ़ रहा हूं। प्रभुपाद लिखते हैं जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है। समझ रहे, जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वो श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो ये जो है बड़ी उपयोगी बातें हैं जो प्रभुपाद जी ने बताई हैं। अब पेज नंबर 220 निकालिए, 220 पेज नंबर, ये छठवें अध्याय का 24वां श्लोक है। इसमें अनुवाद में लिखा है, मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो, यानी श्रद्धा से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को बस में करे। यानी श्रद्धा जो है स्थिर होना चाहिए तभी ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। अब पृष्ठ संख्या 236 निकालिए, 236 पेज नंबर, ये छठवें अध्याय का 47वां श्लोक है। भगवान कहते हैं जो समस्त योगियों में और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो यहां भी श्रद्धा की बात भगवान ने कही कि सर्वोच्च योगी कौन है, जो श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, सोचता है मेरे बारे में। अब इसी के तात्पर्य अगले पेज में, यानी 238वां पेज है, ये श्लोक प्रभुपाद उद्धृत करते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद का है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यते कठिना ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मा महात्मना। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है, ठीक है ना। तो जिसकी श्रद्धा है किसमें? भगवान में और गुरु में, उसको वेद शास्त्रों का ज्ञान प्रकाशित हो जाता है ना। तो आज इसके श्लोक में जो भगवान ने कहा है कि असत है, अगर श्रद्धा नहीं है भगवान में या गुरु में, तो जितने भी यज्ञ दान तपस्या के कर्म है वो क्या है? असत है, व्यर्थ है। अब निकालिए पृष्ठ संख्या 270, 270 पेज नंबर, ये सातवें अध्याय का 30वें श्लोक के तात्पर्य से कुछ पंक्तियां हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है, अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भूला नहीं पाता, अतएव सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। और आगे कुछ पंक्तियों के बाद प्रभुपाद लिखते हैं ना, ऐसा सामर्थ्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है। कैसा सामर्थ्य है? कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों का जो सानिध्य है वो, और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है, साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव ये समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। और आगे कुछ पंक्तियों के बाद उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है, तो प्रभुपाद बताते हैं सब शास्त्रों का मत क्या है, यही है पूर्ण विश्वास हो कृष्ण में। अब पेज नंबर निकालिए 299। पेज नंबर अध्याय 9 श्लोक संख्या 3, इसमें भी जो श्रद्धा नहीं रखते उनका क्या होता है? भगवान कहते हैं, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तात्पर्य प्रभु क्या लिखते हैं? श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है, महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, ये दुर्भाग्य है। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते, इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो ये पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सफलता प्राप्त की जा सकती है, यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत में 4:31-14 कहा गया है, यथा तरोर्मूल निसेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्ध भुजो प्रशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हण मच्युते ज्ञान। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें टहनियां और पत्तियां तुष्ट होती हैं, और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो, क्या मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन से धाम से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है? यहां प्रभुपाद क्या बताते हैं, क्या श्रद्धा है? श्रद्धा का मतलब क्या है? किस बात पर श्रद्धा? कृष्ण की सेवा करनी चाहिए सब काम छोड़ करके, है ना, ये श्रद्धा है। अगले पेज में इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है, कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। देखा, ऊपर ऊपर भक्ति करते हैं उसी को भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपस्या कर्म, है ना, असत है वो। हाँ, ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें किंतु पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। जब पैसा नहीं है, बहुत निर्धनता आ गई है, तो भक्ति करना शुरू करते हैं, और जैसे उनको पैसा मिल जाता है तो फिर छोड़ देते हैं भक्ति को। प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, ये पहली कोटि का व्यक्ति। फिर दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, अपितु संगति और सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। मतलब दूसरों की देखा देखी करने लगते हैं, उनके अंदर श्रद्धा नहीं है न शास्त्रों का ज्ञान है। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से च्युत हो सकते हैं, च्युत मतलब गिर सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को ये श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। देखा, तीसरी कोटि के लोग हैं, कहते हैं हाँ अच्छा है, कृष्ण की भक्ति करना अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा है और ना करने से क्या नुकसान है वो नहीं बता सकते। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है। कर्मयोग का मतलब कर्मकांड समझो, कर्मकांड का मतलब स्वर्ग की प्राप्ति, और ज्ञान कांड का मतलब मुक्ति की प्राप्ति। हाँ, और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उनसे ज्ञान और कर्म कांड का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय कोटि की भक्ति का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और ये सोचते हैं कि ये मात्र प्रशंसा है, उन्हें ये मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है, मतलब असत। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों ना हो, ऊपर से मतलब यज्ञ दान तपस्या चल रहा है, लेकिन वो सब असत होता है, ऊपर से भक्ति में रत है, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परमावश्यक है। अब पेज नंबर 440 निकालिए, 440 पेज नंबर, ये 13वें अध्याय के 26वें श्लोक का तात्पर्य है। कृपा लिखते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने के प्रयास को त्याग दे। ठीक है ना, मतलब इसको कहते हैं अश्रद्धा, तो इसको त्याग दे, इस प्रयास को त्याग दे। उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है, इन्हें श्रद्धा होनी चाहिए। आगे, यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्ति की शरण मिल सके और वह उससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पद चिन्हों पर चल सके, तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है और यह सर्वथा उपयुक्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथा कथित दार्शनिकों की भांति प्रायः समर्थ नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस भाव सागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलेगी। हा? तो कितनी सरल विधि है, श्रद्धा के द्वारा अगर प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करता है, क्या श्रवण करता है, कृष्ण के नाम रूप गुण और लीलाओं के बारे में। और पेज नंबर 506 निकालिए, 506 पेज नंबर। हाँ, इसके तात्पर्य में मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं इस पेज में। जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं, अतः किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। ये समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सत्वगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी क्या है, सत्वगुणी। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा क्या है, रजोगुणी। और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा क्या है, तमोगुणी। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सत्वगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो यहाँ पर प्रभु जी क्या बताते हैं, सात्विक श्रद्धा से ही लाभ होता है व्यक्ति को, रजोगुणी और तमोगुणी श्रद्धा से लाभ नहीं होता। अब पेज नंबर 512 निकालिए, ये अध्याय 17 का 13वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके किया जाए, प्रसाद वितरण किए बिना किया जाए, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना किया जाए, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना किया जाए और श्रद्धा के बिना दिया जाए किया जाए, वो तामसी माना जाता है। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, तमोगुण में श्रद्धा, वास्तव में क्या है, अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं, इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता। ठीक है, अब निकालिए पेज नंबर 556, ये अध्याय 18 का 67वें श्लोक का तात्पर्य अंतिम पंक्तियां हैं। कृपा लिखते हैं, श्रद्धा विहीन लोग भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवत गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। आगे श्लोक संख्या 68 का तात्पर्य कृपा लिखते हैं, जो लोग भक्त नहीं है वे ना तो कृष्ण को समझेंगे ना ही भगवत गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथा रूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। समझे, यानी जिसको श्रद्धा नहीं है कृष्ण में तो वो भगवत गीता की व्याख्या ना करे। भगवत गीता की व्याख्या करना भी अपने आप में बहुत बड़ा यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, उसको नहीं करना चाहिए व्याख्या, क्योंकि असत है, वो बेकार है। किस तरह से हमने चर्चा की है श्रद्धा के बारे में, क्योंकि आज के श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं, अश्रद्धया होतम तत्तम, श्रद्धा के बिना हवन किया गया, दान किया गया, तपस्या की गई और जितने भी कर्म किए गए वो सब असत हैं। तो 17वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था कि जो शास्त्र विधि को छोड़ करके अपनी श्रद्धा से अगर पूजा करते हैं तो उनकी निष्ठा कैसी होती है, सात्विक राजस तामस कैसी निष्ठा होती है, है? तो इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं, कि श्रद्धा हो नहीं सकती। अगर शास्त्र विधि कोई व्यक्ति छोड़ देता है तो फिर श्रद्धा हो ही नहीं सकती। 16वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्य कार्य व्यवस्थित कि शास्त्र प्रमाण है तुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस विषय में ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुम यहां रहते शास्त्र के कहे हुए विधान को जान करके तुझे कर्म करना चाहिए, है ना। कोई प्रश्न किसी का या मैं प्रश्न करूं? तो इनका प्रश्न है कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जब व्यक्ति की श्रद्धा में से कर्म योग और ज्ञान योग का संदूषण निकल जाता है तो फिर वो क्या लिखा है अगर प्रथम कोटि के भक्त फिर वो बन जाते हैं। तो कर्मयोग, कर्मयोग का मतलब समझो कर्म कांड है। कर्म कांड का मतलब है सकाम कर्म, मतलब फल की कामना के साथ कर्म किए जाएं, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर्म किए जाएं, तो वो जो है कर्म कांड कहलाता है। और ज्ञान कांड का मतलब है कि भगवान में हम सदाकार हो जाएं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो भगवान में हम मिल जाएंगे, तो फिर भगवान की सेवा नहीं करनी पड़ेगी, हम भगवान के साथ एक हो जाएंगे, तो वो ज्ञान कांड कहलाता है। तो कर्म कांड और ज्ञान कांड जो है ना ये संदूषण है, यानी प्रदूषण है, कंटामिनेशन। कोई व्यक्ति अगर भक्ति करता है उसमें कर्म कांड ज्ञान कांड का अगर मिश्रण रहता है तो इसका मतलब है कि वो भक्ति शुद्ध नहीं है, ठीक है ना। शुद्ध भक्ति तभी होती है जब कोई व्यक्ति के अंदर ये श्रद्धा हो कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, तो श्रद्धा, इसको श्रद्धा कहते हैं। तो सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं, भगवान इस श्लोक में असत कहते हैं, अगर श्रद्धा नहीं है किसी की तो यज्ञ दान तपस्या जितने कर्म करता है वो असत होते हैं, हैं? तो असत क्यों होते हैं, क्या मतलब वो असत होते हैं, भगवान ने क्या बताया इस श्लोक में, कौन बताएगा? न तत् प्रयत्न है, न तो मरने के बाद उसमें कुछ फल मिलता है और न इस जीवन में कुछ फल मिलता है, असत का यह मतलब है।
हाँ, अब प्रश्न है कि जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है उनका कैसे उद्धार होगा। इसका उत्तर पद्म पुराण में मिलता है, उसमें कहा गया है कि दो कार्यों से निश्चित फल प्राप्त होता है, चाहे व्यक्ति की श्रद्धा हो या ना हो। देखा, तो दो कार्य कौन से हैं? एक तो गंगा स्नान और दूसरा हरिनाम कीर्तन। गंगा स्नान का प्रभाव भागवत के 9वें स्कंध में मिलता है। सगर के 60,000 पुत्र कपिल भगवान के अपराध से भस्म हो गए थे, परंतु उनके शरीर की भस्म का गंगा जी से स्पर्श होने पर वे नरक से मुक्त हो गए। इससे क्या पता चलता है? सगर के वे पुत्र कुछ भी नहीं जानते थे कि गंगा जल क्या है, परंतु उनकी मृत्यु के अनेक वर्षों के बाद भी गंगा जी के द्वारा उनके शरीर की भस्म का स्पर्श हुआ और वे नरक से मुक्त हो गए। तो देखा, गंगा जी का क्या महात्म्य है, परंतु गंगा जी तो हर स्थान पर हर व्यक्ति को हर समय तो उपलब्ध नहीं है, परंतु हरि नाम तो हर समय हर व्यक्ति को हर स्थान पर उपलब्ध है। इसीलिए बृहन्नारदी पुराण में लिखा है हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस हरि नाम में किसी की श्रद्धा हो या ना हो ये अपना काम करता है। जिस प्रकार अग्नि में कोई अपना हाथ डालता है तो अग्नि क्या करती है, उसे जलाती है, उसी प्रकार किसी की हरि नाम में श्रद्धा हो या ना हो हरि नाम कीर्तन से उसके पाप नष्ट होते हैं तथा उसकी चेतना शुद्ध होती है, फिर वह श्रद्धा के धरातल पर आता है। उदाहरण वाल्मीकि मुनि का है, जो पहले क्या थे, रत्नाकर नाम के डाकू। नारद जी ने देखा कि उनकी भगवान तथा उनके नाम में श्रद्धा नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा, मरा मरा जपो। इस प्रकार भगवान के प्रति श्रद्धा ना रहते हुए भी उनको लाभ हुआ और बाद में क्या हुआ, वे राम के महान भक्त बने तथा उन्होंने रामायण नाम का क्या लिखा, आदि काव्य। अजामिल भी अपने पुत्र को जब नारायण कहता था तो वह भी भगवान की प्रति श्रद्धा के साथ नहीं कहता था, वो भगवान का कुछ भी चिंतन नहीं करता था, परंतु वह भी पापों से मुक्त हो गया, फिर वो भगवान का भक्त बना। इसलिए कहा गया है सकृत विपरीतम श्रद्धया हेले आवा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे भगवान, आपकी तो इतनी कृपा है कि आपने अपने नामों में अपनी संपूर्ण शक्तियां अर्पित कर दी हैं,
तथा इन नामों का स्मरण करने में देश काल का कोई भी नियम नहीं है। क्या श्लोक कैसा है शिक्षा सकम का? नामनामकार बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि। परंतु फिर भी यदि नाम का ही अपराध किया जाए तो फिर नुकसान होता है, समझे ना? अपराध के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि नाम का कोई फल नहीं मिलता, या ऐसा भी हो सकता है कि नरक की प्राप्ति हो यदि नाम का भारी अपराध हो, जैसे वैष्णवों के प्रति निंदा आदि। इस तरह से हमें समझना चाहिए कि भगवान की इतनी कृपा है कि श्रद्धा के बिना भी नामाभास के द्वारा भी हमारी शुद्धि हो सकती है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति नाम का अपराध करता है तो फिर उसकी कोई भी गति नहीं है। अब भगवद गीता के 18वें अध्याय का 71वें श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं श्रद्धावान अनुसूयश्च श्रृणुयाद पियो न रहा सोपि मुक्ता सुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। किसी व्यक्ति के अंदर अगर केवल श्रद्धा है, अगर मान लीजिए कि भगवद गीता को वो नहीं समझ पाता है, श्लोकों के शब्द नहीं समझ पाता है, या मान लीजिए कि किसी दूसरी भाषा में गीता पर प्रवचन हो रहा है और वो केवल जानता है कि भगवद गीता पर प्रवचन हो रहा है, लेकिन वो जानता नहीं है कि क्या भगवान कह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी श्रद्धा है कि कृष्ण कुछ कह रहे हैं अर्जुन से जो कि सबके कल्याण के लिए है, मेरे कल्याण के लिए है, कुछ पवित्र विषय है, तो अगर इस प्रकार से श्रद्धा से अगर वो सुनता भी है और वो दोष नहीं उसमें निकालता है भगवान में या भगवद गीता में, सो भी मुक्त है तो वो भी मुक्त हो जाता है, वो भी पापों से मुक्त हो जाता है और शुभ लोगों को प्राप्त करेगा, पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त करेगा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के श्री श्री राधा पारसारथी ललिता विशाखा के श्री श्री गौणताय भगवान के श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
राधा पाठ सखे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।